సుమతీశా సుచరిత్రపోనిదీక్షో నమో గురుభ్యో గుణగురుభ్యా క్షత్రియగుణ సంబంధి పంచవిహాచారకరణ సందర్శే శిష్యానుగ్రహ కుశలే ధమ్మాయనే సదా వందే గురుభక్తి సంయమేనయా తరంతి సంసార సాయరం ఘోరం క్షిణంతి అక్షుకమ్మం జన్మ మరణం న పావేంతి యే నిత్యం వ్రతమంత్రహోమ నిరతా ధ్యానాగ్నిహోత్రాకులా షట్కర్మా విరతా తపోధన ధనా సాధు క్రియా సాధువా శీల ప్రాభరణా గుణ ప్రహరణా చంద్రార్కతే యోధికా మోక్ష ద్వారక పాఠ పాఠన ఘటా దీనంతు మాం సాధువా గురువః పాంచు నో నిత్యం జ్ఞాన దర్శన నాయకాః చారితారణో గంభీరా మోక్ష మార్గోపదేశకా ఇషాయి భంత్యాయి భక్తి కౌసుకో కో తు సాలోచ్యం సమనాను సమదన్ సంచరితానం పంచవిహాచారణమైర్యానం ఆయరాది సుదనానోపదేశానం వచ్చాయాణం తిరుమం పానంద్యానం సమృతాం సయానించుకాలం పంచమి పూజ మే వందామి నమస్సామి దుఃఖో కో కమ్మ కో వైలా సువేగం నం సమాయం నమః శ్రీవర్ధమానాయ నిర్దూతకలిలాత్మని సాలోకానాం త్రిలోకానాం యద్ విద్యాదర్పణాయ బోలే భగవాన్ మహావీర స్వామి కీ ఆచార్య కుందకుందు స్వామి కీ ఆచార్య సమంత భద్ర స్వామి కీ ఆచార్య గురువర విద్యాసాగర్ ముని మహారాజ్ ఈ రత్న కరణక శాబ్దాచార్ ఆచార్య సమంత భద్ర స్వామి కా अपन पढ़ रहे पिछले दिनों के बाद हमने बहुत अच्छे से समझ ली है कि संसार में हमारे दुखों का कारण हमारी अज्ञानता है और उस अज्ञानता को दूर करने के लिए हमें सच्चा ज्ञान आवश्यक है, सच्ची श्रद्धा आवश्यक है और सच्चा हमारा आचरण होना चाहिए। ज्ञान हमें सच्चा पाना है तो उसके लिए श्रद्धा हमारी सच्ची होनी चाहिए। छह ढाला में पहली ढाल जब पढ़ते हैं तो उसमें संसार के चारों गतियों के दुखों का वर्णन किया है, तो ऐसा लगता है कि दुखों से क्या हमारा परिचय करा रहे हैं, हम तो वैसे ही यहां संसार में दुख भोग रहे हैं, उनसे तो हम परिचित हैं ही, अब हमें अलग से और क्या उन दुखों से परिचित करवाने की आवश्यकता है। पर हम ये भूल जाते हैं कि उस पहली ढाल के माध्यम से सिर्फ हमें दुखों का एहसास नहीं करवा रहे हैं, बल्कि हमें बताना चाह रहे हैं कि ये दुख हमने अपनी ही अज्ञानता की वजह से भोगे हैं। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वाली। यदि मैं इस संसार के दुख पाता हूँ, मैं संसार में भ्रमण करता हूँ, तो उसका मुख्य कारण क्या है ये मुझे स्वयं जानना चाहिए। वो मेरी अपनी अज्ञानता, मेरी अपनी गाफिलता या मेरा अपना मोह, और वो मोह दोनों प्रकार का है। वो हमारी श्रद्धा को विकृत करने वाला दर्शन मोह हो सकता है और या कि हमारे अपने आचरण को विकृत करने वाला चारित्र मोह हो सकता है। दूसरे कर्मों के साथ तो भैया थोड़ी गुंजाइश है, ज्ञानावरणी के साथ गुंजाइश है कि वो हमारे ज्ञान को सिर्फ थोड़ा बहुत ढक लेती है, दर्शनावरणी हमारे दर्शन गुण को ढक लेता है, अंतराय कर्म हमें मिलने वाली चीजों में विघ्न डाल देता है पर थोड़ी बहुत तो फिर भी मिल जाती हैं, लेकिन मोहनी कर्म सबसे ज्यादा मुश्किल में डालने वाला है। वो तो हमारे किए कराए सब पे पानी फेर देता है, वो तो हमारे जीवन को ही विकृत कर देता है। हमें कोई भी चीज कमती मिले उसका हमें ज्यादा दुख नहीं है, पर जो मिले पूरो मिले और लेकिन विकृत होकर के मिले तो भैया क्या काम का। बेटों को माँ ने लड्डू दिया, किसी को थोड़ा कम मिला, किसी को दो नुक्ती ज्यादा मिल गई, पर सबको थोड़ा थोड़ा तो मिला, लेकिन एक व्यक्ति ने एक बेटे को पूरा का पूरा लड्डू दिया लेकिन उसमें विष मिला था, तो पूरा लड्डू भी किस काम का। वो जो थोड़ा थोड़ा माने दिया था भले ही मुंह में ही रह गया था, पेट तक नहीं पहुंचा था, लेकिन जीवन को नष्ट तो नहीं कर रहा था। इसीलिए सारे कर्मों में घातिया कर्म कठिन, और घातिया कर्मों में भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा मोहनी कर्म है, और उसी मोहनी कर्म के वजह से हमारे परिणामों में निर्मलता नहीं आती, ना हमारे आचरण में निर्मलता आती है। हमारी आत्मा की विशुद्धि में अगर कोई बाधक है तो वो हमारी अज्ञानता या हमारा मोह है। चारित्र मोह तो दिखाई पड़ता है कि भैया फलाने का फलाने से राग है, फलाने का फलाने से द्वेष है, ये चारित्र मोह तो दिखाई पड़ता है, लेकिन हमारी सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा है कि नहीं, भीतर में ये दिखाई नहीं पड़ता। बाहर से प्रकट हो सकता है कि ओ भैया रोज तो जाते हैं मंदिर और रोज शास्त्र प्रवचन सुनते हैं, मुनि महाराज आ गए तो उनकी सेवा करते हैं, ठीक है, ये इतना तो बाहर में दिखाई पड़ता है, लेकिन भीतर में हम नहीं कह सकते हैं कि इतना होने के बाद भी हमारे अंतरंग में दर्शन मोहनी कर्म की क्या स्थिति है। उपशम हुआ कि नहीं हुआ, क्षय उपशम हुआ कि नहीं हुआ, क्षय हुआ कि नहीं हुआ, ये हम आज नहीं जान सकते हैं। राग द्वेष तो दिखाई पड़ जाता है, इसलिए इस दर्शन मोह को तोड़ने के लिए निरंतर प्रयत्नशील होना ये आचार्यों ने कहा, और वास्तविकता का बोध करा कि हमें ये भी कहा कि देखो अगर दर्शन मोहनी कर्म हमारे जीवन से चला गया तो हमको बहुत सारी चीजें अनायास मिलने वाली हैं। चीजों का लालच दे नहीं रहे हैं, यहाँ पर एक चीज अपन ध्यान रखें, जब भी सम्यक दर्शन की महिमा गाई जा रही है तो वहां पर कोई लालच नहीं दिया जा रहा, जैसे बच्चों को अपन लालच देते हैं कि तुम ऐसा काम करोगे तो हम तुम्हें 10 पैसे देंगे या 1 रुपया देंगे, या तुम ऐसा करोगे तो ऐसा मिल जाएगा। नहीं, वास्तविकता बता रहे हैं कि जिसकी दृष्टि निर्मल हो जाती उसके भीतर कितनी सारी बातें अपने आप स्पष्ट झलकने लगती हैं। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सच्ची दृष्टि पा लेता है वो चीजों को उनकी वास्तविकता में देखना शुरू कर देता है, फिर कोई भी चीज भ्रमित नहीं कर पाती, जैसा है वैसा मालूम पड़ जाता है। देखो मालूम पड़ने के बाद भी हम उससे नहीं बच पा रहे ये बिल्कुल जुदी बात है, लेकिन मालूम ही नहीं है तो बचने का कोई हमारे अंदर भाव भी नहीं है। मालूम पड़ने के बाद बचने का भाव तो होना चाहिए, होता ही है, नहीं बच पाए ये बात अलग है। आश्रय और बंध का स्वरूप समझ लेने के बाद कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो व्यक्ति आश्रय और बंध की क्रिया को बचने के लिए प्रयास नहीं करेगा बल्कि उसको और अधिक करेगा, नहीं। मालूम पड़ जाने के पर कि ये आश्रय और बंध तो मेरे लिए संसार बढ़ाने वाले हैं, तो ये दृष्टि अगर हमें मिल गई तो वास्तविकता हमें मालूम पड़ती, तो हमारे भ्रम टूटते, हमारी अज्ञानता घटती है, घटनी चाहिए। रोज रोज अपन एक एक कदम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, अपने भीतर रोज अपन देखते भी चले जाएं कि कैसे हमारे भीतर का भ्रम आज थोड़ा बहुत टूटा कि नहीं टूटा। कोई जरूरी नहीं है भैया कि एकदम एक बार सुनते ही साथ और हमारे लिए सब कुछ मालूम पड़ जाए, नहीं, निरंतर प्रयास, और कहो कि महीने भर 2 महीने भी सुना और कुछ नहीं हुआ तो भी घबराना नहीं, पता नहीं भीतर जो है वो जो काम चल रहा है वो चलते चलते एक दिन अनायास हो जाए। कहो 2 महीने नहीं हुआ, कहो 2 साल नहीं, कहो 20 साल नहीं हुआ, रोज माथा टेक रहे हैं लेकिन सच्चे देवगुरु शास्त्र को नहीं छोड़ा हमने, और हमने निरंतर जो है उसी दिशा में अपने कदम बढ़ाए हैं, तो जरूर से हमें वो चीज प्राप्त होगी। हमारी अज्ञानता, हमारा मोह समय पा करके जरूर से हटेगा, पर वो समय कब आएगा हम नहीं जानते। हमारा प्रयास तो हमें निरंतर करते रहना पड़ेगा ताकि वो समय जल्दी से आए, प्रयत्न करने से आएगा। अकेले हाथ पे हाथ धरे बैठने से नहीं होगा कि किसी दिन हमको अचानक सम्यक दर्शन घर बैठे बैठे हो जाएगा, नहीं, सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य लेना पड़ेगा, तत्व का श्रद्धान करना पड़ेगा और उसका अभ्यास करना पड़ेगा, रोज उस चीज को मांझना पड़ेगा, धो पहुंच करके तो रखना ही पड़ेगा, कब कब परोसा जाएगा वो बात की बात, पर हम तो रोज बैठेंगे। जैसे कि कोई किसान, और जब पानी नहीं बरस रहा है तब भी अपने खेत में काम कर रहा है, कभी झाड़ झंकार उखाड़ के फेंकता है, कभी थोड़े से मेड़ ठीक करता है, कभी कुछ करता है, तो कोई उससे पूछता कि पानी तो गिर ही नहीं रहा, तुम इतना परिश्रम खेत में क्यों करते, तो वो कहता है कि नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, पानी जब गिरना होगा तब गिरेगा, पर मेरी तैयारी पूरी है, जिस दिन गिरेगा उस दिन मैं अपना काम कर लूंगा। तो वही चीज इसमें है कि मैं तो अपने सम्यक दर्शन के लिए, अपने मोह को हटाने के लिए पूरी तैयारी करके रखूं, किसी भी दिन जो है, जिस दिन हट जाएगा उसी दिन हमारी दृष्टि निर्मल हो जाएगी, और हमें जो चीजें आज हम समझ रहे हैं भैया, वो सब अपने भीतर मालूम पड़ने लगेंगी कि अरे वाह, यही तो था, यही तो सच्चाई थी, हम सुनते तो बहुत थे, आज अनुभव में आ गए। जब तक हमारे अभी भीतर में दर्शन मोह है तब तक हो सकता है कि ये सब बातें और हमें बहुत बाहरी बाहरी मालूम पड़े, लेकिन जिस दिन वो मोह हटेगा उस दिन ये सारी चीजें ठीक मालूम पड़ने लगेंगी, तब उस दिन और अधिक श्रद्धा प्रगाढ़ हो जाती है, व्रत नियम संयम से सम्यक दर्शन में विशुद्धि आती है, ये ध्यान रखना। सम्यक दर्शन से परिणामों में निर्मलता आती है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ जो हमारे और अधिक व्रत नियम संयम होते हैं, श्रद्धा के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो वो श्रद्धा भी विशुद्ध होती चली जाती है। यही बात अपन यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हमारा भ्रम टूटता है। बहुत प्रचलित है ये कहानी, आपने सुनी हो, घटना बहुत प्रचलित है कि एक राजा का बेटा राजकुमार बीमार हो गया, एक ही तो था, दिन रात उसके पास राजा बैठे बैठे गुजार देता था, रात में नींद भी नहीं आती थी कि पता नहीं एक ही राजकुमार है और वो भी नहीं रहा तो क्या होगा इस देश का, इस राष्ट्र का, ऐसा सोचता था। और एक दिन क्या हुआ कि बैठे बैठे ही उसको बहुत थका था, तो बैठे बैठे नींद लग गई और नींद में उसने सपना देखा। ऐसे सपने हमारे तो दिन में भी हम देखते रहते हैं, ये सब संसार अगर देखें तो खुली आंख का स्वप्न ही है कि जे हमारा जे पराया, जे हमारा जे पराया, दिन भर इसके अलावा भैया और कछु हो जा बताओ, हमें जो काम कर लेने, हमें जो काम कर लेने, हमें अब वो काम डरो है वो करने हैं, शरीर के लिए लेकर के, अपने परिवारजनों को लेकर के, अपनी घर गृहस्थी को लेकर, इसके अलावा कुछ और आता है मन में, या ज्यादा हुआ तो मंदिर जाने हैं, जो भी एक काम में ही शामिल है, ओ बाबे हमारे जी को माला फिर भी डरी सुबह फिर नहीं, जो भी ऐसा लगा, ऐसा नहीं लगने लगता कि बड़ली हमारे जी को अबे, तो वो धर्म भी जो है हमें ऐसा मालूम पड़ने लगता है जैसे हमें उससे कुछ आनंद वानंद नहीं आ रहा, वो हमें करना है, हमारे रूटीन में शामिल हो गया, इसके अलावा और कुछ है वास्तव में कभी जो है, और अपने भीतर ऐसा लगता है कि मैं यहाँ क्यों आया, मैंने यहाँ जन्म लिया है और कौन से ऐसे मैंने पुण्य अर्जित किए होंगे, कभी बैठ के मन में इस चीज का सामायिक के समय तो विचार करना ही चाहिए कि मैंने कौन से ऐसे पुण्य अर्जित किए जिसकी वजह से मुझे ये पर्याय मिली और इस पर्याय का मुझे क्या उपयोग करना है, और उसमें मेरे इस पर्याय में जो आत्मा है वो कैसी है, उसका स्वरूप क्या है, इस तरफ बहुत मुश्किल से दो बातें कोई सुना देवे आत्मा की तो थोड़ी बहुत सुन भी लेवे, अपने मन से अपन को 24 घंटा में कहूं ये परिणाम नहीं होते कि सब चीजों से हटके भैया हमें थोड़ा सा अपने आत्मा के बारे में भी तो विचार करना, मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव है वो, मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव संसार में आके कहां विलुप्त प्राय जैसा हो गया है, मैं तो और दूसरे भाव तो करता हूं और जो मेरा स्वभाव है उससे क्यों विचलित हो जाता, ऐसा आता नहीं, वो ये भ्रम ही तो है, ये अपन भी तो सपना ही देखते हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि वास्तविकता नहीं मालूम, सच्चाई हमारे ध्यान में आती नहीं है, इसका मतलब है कि सपना ही हमें अच्छा मालूम पड़ता। वो राजा स्वप्न देखता है, क्या देखता है कि उसके 12 राजकुमार हैं, एक से एक सुंदर 12 बेटे हैं, और हर एक के पास अच्छा अच्छा महल है, और उन महलों में वो रहते हैं। बड़ा आनंद आ रहा है उसे उस स्वप्न के समय, लेकिन अचानक उस राजकुमार जो कि उसके स्वप्न का नहीं, जो कि उसका सच्चा राजकुमार है, वो राजकुमार अपने प्राण छोड़ देता है। और रानी जगाती है राजा को कि क्या तुम्हें इतने दिन हो गए कभी सोए नहीं, आज अचानक तुम्हारी नींद कैसे लग गई, उठो। तो वो तो उसके प्राण निकल ही गए समझो। तो राजा उठ करके देखता है और देख करके मुस्कुराने लगता है। रानी सोचती कि लगता है ऐसे बहुत गहरा सदमा लग गया, वरना रोना चाहिए था, मुस्कुरा क्यों रहा है। वो हिलाती है कि तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम कि राजकुमार दम तोड़ चुका है। तो वो कहता है कि मेरी हंसी का कारण तो कुछ और ही है, मैं तो ये सोच रहा हूं कि वो जो 12 स्वप्न टूटने पर नहीं रहे उनके लिए रोऊं, या कि ये आंख खोलने पर जो नहीं रहा उसके लिए रोऊं। अब मैं बहुत मुश्किल में हूं कि किसके लिए रोऊं, अब मैं रो नहीं पाऊंगा, मुझे वास्तविकता मालूम पड़ गई। बारह जो स्वप्न में थे उनके साथ में अपना जीवन ऐसे बिता रहा था और तुमने मुझे जगा दिया, वो मेरे 12 तो स्वप्न के चले गए, और ये जाग करके देखता हूं तो ये जो जीवित आंख से दिखाई पड़ रहा है ये भी चला गया है। यहाँ संसार की वास्तविकता इतनी ही है, और ऐसी संसार की वास्तविकता जिसे एक बार महसूस हो जाती है, महसूस करने की बात कह रहा हूं, जानते तो सब है भैया, मरघट तक हुआ है कितने जरों को जलाया है, मगर अपन को जलने पर है जो कबू नहीं याद को कह दीवे सो बुरा योर मान जो कि हो अपन को कोई सोई ऐसे ये जाने पर बुरा लग जाएगा। हम मरण की चर्चा नहीं करना चाहते, जबकि मरण हमारी वास्तविकता है, और यही जन्म मरण अगर हमें पीड़ा देने लगे कि क्या बार बार जन्मना, क्या बार बार मरना, अब नहीं मरूंगा, अब नहीं जन्मूंगा, अगर एक बार भीतर आत्मा में ये क्षमता जागृत हो जाए तो जन्म मरण से पार हो जाए, वो हमारा स्वरूप है, वो हमारी वास्तविकता। लेकिन ऐसी आती तो नहीं है बात, दूसरे के जीवन के बारे में तो आती, अपने ही जीवन के बारे में नहीं आती है। सम्यक दृष्टि इस प्रकार की बात को बहुत अच्छे से अनुभव करता है, ये सब चीजें उसे अपने भीतर ठीक ठीक महसूस होती हैं कि हाँ ऐसा ही स्वभाव है, फिर वो हर स्थिति में और आसानी से अपने जीवन को बिताता है, राग द्वेष में नहीं पड़ता है, संक्लेश में नहीं पड़ता। ये एक सम्यक दृष्टि की स्थिति है, हम भी इसी चीज को पाएं तो हमारे जीवन की सार्थकता है। आज अपन देखते हैं कि क्या है कीमत इस सम्यक दर्शन की, रोज अपन इस चीज को पढ़ रहे हैं कि कितनी कीमती चीज है। अब तो थोड़ा लालच आ ही जाना चाहिए मन में कि भाई जब इतनी कीमती है तो अपने को पाना चाहिए, कहाँ मिलती है, थोड़ा प्रयास तो करना चाहिए। और मिलती मिलती कहीं नहीं कहीं मिलती होती तो बहुत अच्छा था, आसानी थी, लेकिन अपने भीतर ही है, बस यही तो मुश्किल। अपने पास वाली चीज दिखाई नहीं पड़ती भैया, जो नहीं मिली और दूर है वो दिखाई पड़ती, उसी का आकर्षण ज्यादा है। जब तक कोई चीज हमें नहीं मिली थी तब तक वो अच्छी मालूम पड़ती थी, और जिस दिन आकर के अपने घरे धर गई सो कहो एक बार कहो देखो ने तक दिन भर में, अब तो धरी भी हमारे थी तो रखिए, कहो ध्यान भी नहीं रहे, दांत टूट जाता है तब 100 दफे जीव दिन भर में उतई जे है, वैसे हर एक दांत को जीव कहो नहीं देखत के ठीक है के नहीं देखत का, रोज गिनत का जीव से अपने दांत छीखे के 32 है के 31 है के आज 29 तो नहीं रह गए है? और एक आध दिन टूट जाए तो जीव वहीं जाएगी, क्यों जाएगी। इसीलिए हमारे साथ यही मुश्किल है, जो हमारे पास है जिसे हमें प्राप्त कर लेना चाहिए उससे हम विमुख हैं, और जो हमारा नहीं है पराया है उसकी तरफ हमारा मुख है, और वही प्राप्तव्य मालूम पड़ता है, वही ग्रहण करने योग्य मालूम पड़ता है। ये कहते हैं कि कैसा है वो सम्यक दर्शन, कैसी है वो सम्यक दृष्टि जिससे कि हमें संसार की वास्तविकता का बोध हो जाता है। ना सम्यक्त्व समं किंचित् न नासम्यक्त्व समं किंचित् त्रैकाल्ये जगत्त्रयपि जगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्तु समं नान्यत्तनुभ्रताम् नासम्यक्त्व समं किंचित् त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्तु नान्यत् तनुभ्रताम् नान्यत् तनुभ्रताम्। तनुभ्रताम् मतलब हम सब शरीर धारण करने वालों के लिए मिथ्यात्व श्रमम अश्रेयो ना, मिथ्यात्व के समान और कोई अहितकारी नहीं है। अगर हमारा कोई शत्रु है तो हमारी अपनी अज्ञानता ही है, दूसरा और कोई यहाँ हमारा शत्रु नहीं है। और हमारा कोई अगर मित्र है तो वो हमारे अपने दृष्टि की निर्मलता ही है, वो सम्यक दर्शन ही हमारे लिए श्रेयस्कर है, और हमारे लिए अहितकारी तो हमारा मिथ्यात्व या हमारी अज्ञानता ही है। ना सम्यक तो समम, सम्यक दर्शन के समान किंचित भी जरा भी, त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि तीनों कालों में और तीनों लोकों में अगर कोई हितकारी है तो वो सम्यक दर्शन ही है। इतनी सारी सम्यक दर्शन की चर्चा के बाद क्या अपन ऐसा निर्णय स्वयं नहीं लेंगे? वही निर्णय तो आचार्य भगवंत हमारे लिए कह रहे हैं कि अब तो तुम इस निर्णय पर पहुंच जाओ, अपने आप इस बात को एहसास करें हम कि हाँ सचमुच में अगर सम्यक दर्शन ऐसी चीज है तो वो सम्यक दर्शन के समान हमारा हित करने वाला और कोई नहीं है, और मिथ्यात्व के समान हमें संसार में रुलाने भटकाने और पीड़ा देने वाला और कोई नहीं है। और उस मिथ्यात्व के साथ जो अधिक घातक और हमारे साथ बैठा वो हमारी अपनी कषाय अनंतानुबंधी कषाय, अनंतम मिथ्यात्म यद वदनंती इति अनंतानुबंधिना। कहते जो अनंत मिथ्यात्व को बांधने में मदद करती है वो हमारी अनंतानुबंधी कषाय है। इसीलिए तो कहीं कहीं पर जब प्ररूपण करते हैं तो कहते अपने कषाय की मंदता के साथ तत्व विचार करना, क्योंकि कषाय की तीव्रता में तत्व विचार तो संभव ही नहीं है। इसलिए पहले कषाय की मंदता आवश्यक है, मंद कषायी व्यक्ति ही तत्व के अभ्यास के माध्यम से अपने मिथ्यात्व को तोड़ सकता है। किसी को महाव्रत लेना हो तो मोक्षमार्ग प्रकाशक में सबसे पहले लिखा कि तत्व का अभ्यास होवे, तत्व का अभ्यास होवे, परिचय सहन करने की क्षमता होवे और संसार से वैराग्य होवे, क्योंकि सम्यक दृष्टि के दो ही मुख्य विशेषताएं हैं ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के पास ये दो चीजें अनायास आती हैं, ज्ञान सच्चा होता है और संसार से विरक्ति। लेकिन आज के समय में अगर गौर से देखें तो हम ज्ञान को तो ठीक मान लेते हैं कि हाँ सम्यक दृष्टि के पास ज्ञान आ गया, चार बातें वो बहुत अच्छी करने लगा है, लेकिन उसके पास जो वैराग्य की शक्ति होना चाहिए वो बहुत कम दिखाई पड़ती है। दोनों शक्तियां हैं, ज्ञान वैराग्य शक्ति सम्यक दृष्टि भवति नियतम। सम्यक दृष्टि के लिए तो ये नियम से दो शक्तियां प्राप्त होती हैं, ज्ञान और वैराग्य, और वही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य की शक्ति जिस सम्यक दर्शन के साथ में है वो सम्यक दर्शन ही सबसे श्रेयस्कर है। अकेले सात तत्वों के स्वरूप समझ लेने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है भैया, उसके साथ अपने आत्मा का ज्ञान और संसार से वैराग्य ये चीज भी जुड़ी हुई होनी चाहिए, ऐसा सम्यक दर्शन श्रेयस्कर है। हमें ऐसे ही सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति में जो जो बाधक हैं उन सब से बचते भी रहना। देखो किसी भी चीज को पाना हो तो पाने के लिए प्रयत्न भी करना और उस चीज में जो बाधक बनती हो उस चीज से बचने का भी प्रयास करते रहना, दोनों चीजें आवश्यक हैं। हमने पहले पिछले दिनों भी बैठ के अपन ने बात की थी कि अच्छाइयों को पाने के लिए अच्छाइयों की तरफ तो जाना ही पड़ेगा, बुराइयों से बचना भी पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम अच्छाइयों की तरफ तो बढ़ रहे हैं और बुराइयां भी हमारे साथ चली आ रही हैं, उनसे हम बच नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इसी तरह यहां पर भी है कि अगर मिथ्यात हमारे लिए कल्याणकारी है, हमारा अहित करने वाला है, तो उससे निरंतर बचें। मोटा मोटा तो है ही कि जो रागी द्वेषी हैं उनको हम देवगुरु शास्त्र नहीं माने, इतना तो कर ही लें भैया, उनको अपने रागी द्वेषी अपने वीतरागी भगवान के समान तो नहीं माने। और जो सात तत्वों के अलावा अन्य भी बहुत सी बातें हैं, जो सुपरस्टिशंस हैं, अंधविश्वास हैं, उनसे तो कम से कम हम बचें। इनसे बच करके फिर हम तत्व चिंतन कर पाएंगे, तब जाकर के हमें वो श्रेयस्कर धर्म प्राप्त होगा, वो सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। और इन्हीं में अपन भटकते रहे तो उसके उससे क्या होने वाला है, ये चीज भी हमारे हाथ नहीं आई और वो चीज जो हमें नहीं पानी थी वो चीज भी हम छोड़ नहीं पाए। इसलिए ये विचार करके कि जब मुझे श्रेयस्कर, अच्छा अपन थोड़ा सो अपनों माने विचार भी करो कि अपन बानी आदमी कहाऊ, लाभ हानि पहले देखा कौन में लाभ है कौन में नहीं है लाभ। हाँ इतने ही कर लो, जैसे दुकानदारी में बैठ के करते हैं उसमें तो, अब जब जोन लाभ की चीज है भैया, मुनाफे को काम है जोन उसको करो, या जोन में हानि है उसको करो। मुनाफे का काम करेंगे, घाटे का सौदा भी नहीं करेंगे, सौदा तो करेंगे लेकिन अच्छा करेंगे। तो ये तो सौदा हमें बता ही रहे हैं कि बहुत अच्छी चीज है, अपनी दृष्टि को निर्मल करो तो संसार में सब कुछ आसान हो जाएगा, उस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लो। क्योंकि वो मिथ्यात्व ही हमारी, मिथ्यात्व कहो, मोह कहो, अज्ञान कहो, भैया सब एक ही बात है। मुख्य तो वही है इस संसार में, हमारा अहित करने वाला। पर हमें ऐसा नहीं मालूम पड़ता, हमें तो लगता है कि जो ये सब लोग हैं वे सब हमारा अहित करने वाले हैं। हमें बाह्य पदार्थ अपना आहित करने वाला मालूम पड़ता, हमें अपने भीतर बैठा हुआ जो अज्ञानता और मोह है वो आहित करने वाला, उसको तो हम अपने चिपकाए फिरते हैं अपने जीवन से। यही भ्रम है, इस भ्रम को हमें समय रहते तोड़ देना चाहिए। और क्या चीज मिलती है सम्यक दर्शन से, ये तो अपन पहले भी चर्चा कर चुके कि पूरा पंच परावर्तन तो बहुत बड़ा है, अनंत संसार है। अगर सम्यक दर्शन हो जाता है तो हमारा संसार जैसे कि पूरा समुद्र भर पानी है तो चुल्लू भर पानी रह गया। इतना काम अकेले दृष्टि की निर्मलता से हो जाता, फिर उसके बाद तो समेटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, व्रत नियम संयम के साथ, और हम आसानी से संसार से पार हो जाएंगे। इसलिए सम्यक दर्शन श्रेयस्कर है, ये बात इसमें कही। अब एक सम्यक दृष्टि को क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं, थोड़ा जो भी लालच दिखाते हैं कि देखो जे जे चीजें मिलती हैं और तुम थोड़े और आगे बढ़ो, कैसा हमारे ऊपर आचार्य भगवंतों का उपकार है कि हमें बिल्कुल जो है जैसे कि एक माँ अपने बेटे को अहित से बचाकर हित में लगाने के लिए निरंतर विचार करती है, डांटती डपटती भी कभी कभी है और कभी कभी प्रेम से समझाती है। सो पहले अभी कल बैठ के थोड़ा सा डांट डपट भी कर दी थी एक बड़े वाले बेटे की, तो को डांट दिया था कि तुम तो बहुत मोही हो, तुम्हारा संसार नहीं जाने वाला, और दूसरे छोटे वाले को शाबाशी दे दी थी। ऐसे कभी कभी डांट भी देती, शाबाशी भी दे देती है। और ये जिनवाणी माँ ही है और हमें बताती है कि देखो कैसे अगर तुम अपनी दृष्टि निर्मल कर लोगे तो इतनी सब बातें मिल जाएंगी। लेकिन इस श्लोक को अपन पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रखना, जिन्हें ये बातें नहीं मिली हैं वे ये ना सोचें कि हमारे पास सम्यक दर्शन की योग्यता ही नहीं है। नहीं भैया, इन बातों के साथ सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होता, पर इन चीजों के बावजूद भी सम्यक दर्शन तो वो प्राप्त कर सकते। सम्यक दर्शन चारों गतियों का जीव प्राप्त कर सकता है, लेकिन चारों गतियों में सम्यक दृष्टि उत्पन्न होवे ये नियम नहीं। वही बात यहां पर कहते हैं, सम्यक दर्शन शुद्धा, दर्शन शुद्धा नारग तिर्यग नपुंसक स्त्री त्वानी, नारग तिर्यग नपुंसक स्त्री त्वानी, दुष्कुल विक्रतालप आयुर, दुष्कुल विक्रतालप आयुर, दरिद्रतां च प्रजन्तिनाप्यव्रतिका दरिद्रतां च प्रजन्तिनाप्यव्रतिका। थोड़ी सी इस श्लोक की जो लय है, अब आगे आने वाले श्लोक 41 तक इनकी लय थोड़ी अलग है। जो अपन पढ़ रहे थे वो आर्या छंद था, ये बड़ा आर्या गीति छंद कहलाता, ये थोड़ा बड़ा छंद है इसको पढ़ने का। सम्यक दर्शन शुद्धा, सम्यक दर्शन शुद्धा, नारग तिर्यग नपुंसक स्त्रीत्वानी, नारग तिर्यग नपुंसक स्त्रीत्वानी, दुष्कुल विक्रतालप आयुर, दुष्कुल विक्रतालप आयुर, दरिद्रतां च प्रजन्तिनाप्यव्रतिका, दरिद्रतां च प्रजन्तिनाप्यव्रतिका। सम्यक दर्शन शुद्धा, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है वो क्या प्राप्त करता है और क्या प्राप्त नहीं करता, कहते जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है अव्रतिका अपि, जिसने व्रत नियम अभी लिए नहीं है, अकेला जिसको सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा हो गई है, या भीतर में जिसके सात प्रकृतियों का क्षय उपशम या क्षयोपशम हो गया है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव व्रत से रहित होने पर भी नारग तिर्यग नपुंसक स्त्रीत्वानी, ना नरक में उत्पन्न होता है, न तिर्यंच में उत्पन्न होता है, न नपुंसक होता है, न स्त्री पने को प्राप्त करता है। ये थोड़ी विशेष, सामान्य रूप से क्या कहेंगे कि सम्यक दृष्टि नरक में नहीं जाएगा, पर जिसने पहले नरक आयु बांध ली, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो नरक आयु में तो नरक में तो उसे जाना पड़ेगा। अगर क्षयोपशम सम्यक दर्शन है तो नरक जाते समय छूट जाएगा, शायक है तो साथ में जाएगा, मगर पहले नरक से नीचे नहीं जाएगा। सैनिक चक्र सैनिक का उदाहरण आता कि नहीं, पहले सातवीं नरक की आयु की बंद कर लिया था, बाद में शायक सम्यक दर्शन और तीर्थंकर प्रकृति दोनों हो गई, शायक सम्यक दर्शन के प्रभाव से नरक में तो जाने से नहीं बच पाए, लेकिन पहले नरक से नीचे नहीं जाएंगे, ये थोड़ी सी विशेषता होगी। वही चीज यहाँ कह रहे, तिरंच में भी सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न नहीं होता, सम्यक दर्शन के साथ नपुंसक नहीं होता, सम्यक दर्शन के साथ स्त्री पने को प्राप्त नहीं होता। बाद में बनने के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त करे, इसमें कोई बाधा नहीं, चेलना सम्यक दृष्टि थी, लेकिन जब उत्पन्न होंगे तब वो सम्यक दर्शन लेके उत्पन्न नहीं होंगे, सम्यक दर्शन के साथ स्त्री पने को प्राप्त नहीं होंगे। और कहते दुष्कुल बुरा कुल नहीं मिलेगा, सम्यक दृष्टि के लिए बुरे कुल में उत्पत्ति नहीं, जहां की आचरण ही अपवित्र है ऐसा कुल नहीं मिलेगा, विकृत नहीं होगा, अंग भंग नहीं होगा, विकलांग नहीं होगा सम्यक दृष्टि। इतनी सब विशेषताएं बता रहे हैं सम्यक दर्शन के साथ में, लेकिन भैया जो जिनको ये चीज मिल गई है, कोई दुष्कुल वाला है, लेकिन वो दुष्कुल में रह करके भी सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर सकता, ये बात अलग है कि सम्यक दर्शन की वजह से उसको दुष्कुल नहीं मिलेगा, पर मिथ्यात् की वजह से दुष्कुल मिल गया है तो अब ऐसा नहीं समझना कि हमें तो अब मिल गया उसको, हम तो बिल्कुल गए बीते ही हो गए, नहीं, वहां रह करके भी सम्यक दर्शन तो पा सकता, ये इस गाथा को इस श्लोक को ऐसा समझिएगा। और अल्प आयु, उसकी आयु अल्प नहीं होगी, अल्प आयु ऐसे भी मनुष्य हैं भैया जिनकी आयु 2 मिनट होती है, आए आए संसार में और पता ही नहीं लगा और मरण भी हो गया, और संगी पंचेंद्री मन वाले मन और मनुष्य ऐसे जीव भी आते हैं, ऐसी पर्याय भी अपन ने प्राप्त कर ली है अल्प जीवन वाली। और दरिद्रताम, सम्यक दर्शन से युक्त जीव दरिद्रता को प्राप्त नहीं होगा। ना व्रजंती अपि अव्रतिका, सम्यक दर्शन के साथ अगर व्रत नियम संयम नहीं भी लिया है, मात्र सम्यक दर्शन उसको हो गया है, तो न नरक में जाएगा न तिरंच, अगर मान लो तिरंच आयु या मनुष्य आयु का पहले बंद कर लिया है, बाद में सम्यक दर्शन हुआ है, तो भोग भूमि का मनुष्य हो जाएगा और तिरंच हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इंप्रूवमेंट तो होएगा ही, पर अपन मनुष्य आचार्य कई बार कहते हैं कि इसीलिए जन्म जयंती वगैरह में इंटरेस्ट नहीं ले, क्या जन्म दिवस मनाए अपन, जन्म तो वास्तव में वो है जब अपन को रत्नत्रय की प्राप्ति होए, वो जन्म है, क्योंकि यहाँ पर अपन ने जन्म भी लिया तो कोई भी यहाँ पर मनुष्य बना है तो मिथ्यात्व के साथ ही जन्म ले, यहां पंचम काल में सम्यक दर्शन के साथ तो किसी का जन्म होता नहीं। इस दृष्टि से वही चीज यहां पर है कि अगर मनुष्य तिर्यंच और नरक की पर्याय अगर किसी को मिलती है तो सम्यक दर्शन के बिना ही मिलती है। सम्यक दृष्टि तो मात्र देवायु का ही बंद करता है, और अगर नरक उसे जाना पड़ा है तो पहले बांध ली होगी नरक आयु, या तिरंच में गया है तो तिरंच आयु पहले बांध ली, या मनुष्य में गया है तो मनुष्य आयु पहले बांध ली। एक चीज और विशेष है यहाँ पर जो मैं भूल जा रहा हूं, वो विशेषता उसमें ये है, देखिएगा, मनुष्य और तिरंच के सम्यक दर्शन के काल में अगर आयु का बंध होता है तो नियम से वैमानिक देवों की आयु का ही बंध होता है। मनुष्य और तिरंच ये दोनों सम्यक दर्शन के साथ आयु बंध करेंगे अगर, तो वो भी छोटे मोटे ये भवनवासी व्यंतर इत्यादि देव नहीं, वैमानिक देवों की आयु होगी। और नारकी और देवों के सम्यक दर्शन के काल में अगर आयु बंधती है तब फिर उनको नियम से कर्म भूमि के मनुष्य की आयु बंधेगी, अन्य आयु नहीं बंधेगी। ये एक विशेषता इसमें है। तो इस अपेक्षा से ये सारी चीजें समझ करके और हमें उस सम्यक दर्शन को तो प्राप्त करने के लिए प्रयास हमेशा करना चाहिए। संशय आत्मा विनश्यति, इसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए, क्योंकि संशय रखने वाला कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। ये गीता में भी लिखा संशय आत्मा विनश्यति, ये जब पढ़ता हूँ तो लगता है कि बात तो बिल्कुल एकदम ठीक है। हम लोग सब बातें जान लेते हैं, समझ लेते हैं, पर भीतर का संदेह जो है का पता है सो है कि नहीं, सुनी तो है नहीं भाई, बिल्कुल पक्की बात है। अगर हमें ये पर्याय मिल गई है, अगर हमें दुष्कुल मिल गया है, तो समझना कि पूर्व जीवन में हमने सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा नहीं करी होगी। अगर स्त्री पर्याय हमको मिली है तो जरूर हमने पूर्व जीवन में सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्न नहीं किया होगा। अगर हमें विकृत शरीर मिला है, अगर हमें अल्प आयु मिली है, अगर हमारे जीवन में दरिद्रता मिली है, तो कोई ना कोई कारण है, हमारे पूर्व जीवन में हमने अपनी दृष्टि को निर्मल नहीं किया होगा। कोई बात नहीं, लेकिन आज वर्तमान में तो हम अपने जीवन को संभाल सकते हैं, सुधार सकते हैं। ये प्रयास हमें, और इसी से एहसास होना चाहिए कि हाँ सचमुच, लेकिन दूसरे को नहीं देखना भैया, अगर दूसरे की तरफ देखोगे तो गड़बड़ होगी। किसी को विकृत है शरीर, अंग भंग है और विकलांग है, तो उसके प्रति तो दयी भाव रखना, ऐसा विचार नहीं करना कि अच्छो है करो हुई है सो जब ही तो हो गए, पहले सम्यक दर्शन नहीं करो ये जब तो हो, ऐसा नहीं करना। बस इतनी इन श्लोकों की व्याख्या के साथ यही बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अपन का मन जो है वो दूसरा ही विचार करने लगता है इन सब चीजों को पढ़ने के बाद, नरक में तिरंच में। इससे हमें ये होना चाहिए साथ में कि देखो अपन मनुष्य बने हैं तो कोई ना कोई पहले हमने अच्छा किया, और अगर हमें अच्छा परिवार मिल गया है, हमारे घर में धर्म ध्यान होता है, रत्नत्र की परंपरा है, तो जरूर से हमें पहले हमने कुछ प्रयत्न किया होगा, और आगे भी हमें चाहिए है अगर तो प्रयत्न करना चाहिए। और जिसको नहीं मिला है ये सब चीजें तो उसे भी प्रचार करना चाहिए कि देखो पहले नहीं किया था इसलिए अभी नहीं मिला, और अभी भी नहीं करेंगे तो फिर तो कभी नहीं मिलेगा, इसलिए अब तो मुझे उस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ही लेना है। दोनों स्थितियों में अगर हमें अच्छी चीज मिल गई है तो आगे ये अच्छी चीज हमसे छूटने जावे इसके लिए प्रयास करना, और अच्छी चीज नहीं मिल पाई, मान लो अज्ञानता से बुरी चीज मिल गई है, तो कोई बात नहीं, अब तो हमें समझ आ गई है, हम आगे के लिए तो अपना सुधार कर ही सकते हैं। यही दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए, इसी भावना के साथ कि हम सब उस सच्ची दृष्टि को प्राप्त कर सकें। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की जय।